عزت مندیں گجدار کا ماں پہلی لوٹیں کے چوش میں گوشگ پدا ماں بلوچ کا عائد ایر بیار مریے گپ پتران واحد سرا شنکت نکتنت پرچے کے مارا اے گپ پتران دیرا سر بتگان تو امن گواں کے ٹیم منتا گرا کے آئیا مروچی جمعہ روچا 15 جنوریا مارا اے ریکارڈنگ دیم داتنت وش میں خدمت آزرنت بلے یک گپ پہ دلگوش کنگی ہیں کہ بازیں بلوچی گوشگ ہیں کہ پرچے واجہ ایر بیار مریا گن جیو ٹی ویا کراچی نندو کے بلوچانی سرا ایم کیو ایم توسطہ چے کے قتل آمی بوتا آئیے بابتا پرچے گپ نکتا جی واجہ یہ گپ دلگوش کنگ لوٹی کہ یہ وادی واجہ ایر بیار مری صاحب انٹرو کے گرگ بوتا یہ واقعہ پیش نیت کا بوتا یہ چند روز پیسر گئی انٹرویوی کیشانہ اے امی ٹیما شنگ کرتا گو اے تچکیں انٹرویوی نبو تک وش میں منت نو بلوچ قائد ایر بیار مریا گو جیو ٹی ویا گوش دارے
Assalamu alaikum, aap dekh rahe hain Jio News, the crisis cell special. We are back with a series of episodes being shot in the UK aur aaj hum baat karenge Balochistan issue pe jo ek pending crisis hai, kabhi hume lagta hai ki shayad sort out hone ja raha hai aur kabhi lagta hai ki exacerbate ho raha hai. Aaj isi par baat karenge Harbiyar Mari sahab se, exiled Baloch leader in the UK himself. Harbiyar sahab, thank you so much for joining us on our special episode of Crisis Cell here from London. Sabse pehle to کچھ اچھی خبریں پاکستان میں اس وقت نہیں سنائی دے رہی ہیں, خود کش حملے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ این آر او کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, کرپشن چارجز سامنے آ رہے ہیں, پر ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے ہے, اسپیشلی کیونکہ چاروں وزراء اعلیٰ نے این ایف سی اوارڈ سائن کیا ہے, گوادر پر پروگرس ہوئی ہے, آپ اس کو اچھی خبر خوش آئند قرار دیں گے؟
پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے خوش آئند ہو, بلوچوں کے لیے لگتا ہے کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائی.
آپ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؟ مطلب یہ ایسا ہمیں کیوں, مطلب کوئی بھی پازیٹو اسٹیپ جب بلوچستان کی طرف ہوتا ہے, اینڈ آئی نو دا ہسٹری, گیون دا ہسٹری آف بروکن پرومسز, بٹ وہ تو ہر پرووینس کے ساتھ ہوئے ہیں, جتنا کا وعدہ کیا جاتا ہے ہوتا نہیں ہے. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ایوری اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن کوڈ ناٹ لیڈ ٹو سم تھنگ بیٹر؟
از اٹ دا رائٹ ڈائریکشن؟
آپ بتائیے.
میں نہیں سوچتا ہوں یہ رائٹ ڈائریکشن. بلوچستان کو پیکجز نہیں چاہیے, یہ این ایف سی اوارڈز نہیں چاہیے, بلوچستان کو اس سے بڑے حقوق چاہیے, اپنا آئیڈینٹیٹی چاہیے, وہ جو بلوچستان کو نہیں مل رہا ہے, جو بلوچستان سے چھینا گیا کوئی 60 ایئرز بیک, تو وہ آئیڈینٹیٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اکثر بلوچ یہ مان رہے ہیں. کچھ بلوچ جو این ایف سی کے ساتھ خوش ہوں گے, ان کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہیں, وہ کہیں گے یہ خوش آئند چیز ہے, اکثریت کہتے ہیں کہ خوش آئند نہیں ہے, اس میں کوئی فرق ہی نہیں, بلوچوں کو فائدہ فرق نہیں پڑے گا.
آپ نے کہا بلوچوں کو آئیڈینٹی چاہیے اور اسی آئیڈینٹی کے لیے ہم یہ تگ و دو بھی دیکھتے ہیں کہ فریڈم اسٹرگل جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے سامنے سامنے, مطلب اس کے علاوہ بلوچ لیڈرز کا یہ ہمیشہ سے جان رہا ہے اسٹینڈ رہا ہے کہ وٹ ایور از بینگ ڈن اٹس ناٹ انف, اور جس طرح سے آپ نے بھی ابھی یہ کہا اٹس پریڈکٹیبل آنسر کہ یہ کافی نہیں ہے, اس کو اور ہونا چاہیے, ہمیں یہ سب یہ پاکستانیوں کا فائدہ ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, I want to get to the basis of this, کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ایک چھوٹا سا اگزام یا ایک پراسپیرٹی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, بلوچستان کے لیے آئیڈینٹی کس طرح بنتی ہے؟ پراسپیرٹی سے, ایک ڈیولپڈ کنٹری سے, تو اگر وہ اسٹیٹس مل جائے, تو اگر فارورڈ بلڈنگ ہو رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایٹ لیسٹ اٹس اے ڈراپ ان دی اوشن, ایٹ لیسٹ کسی چیز کے لیے تھوڑا سا بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟
جی, پھر سے ہسٹری میں جانا پڑے گا, جس چیز کو پروسپیرٹی کہتے ہیں, ڈیولپمنٹ کہتے ہیں, یہ برٹش نے بھی لایا تھا, ریل روڈز لائے تھے, روڈز لائے, کافی ڈیولپمنٹ وہاں پہ لایا, جو پل بنایا, جو انہوں نے راستے بنائے آج تک چل رہے ہیں, کام دے رہے ہیں, وہ ان کا ایکسپلوئٹیشن کا ایک طریقہ تھا ٹو فردر دا ایکسپلوئٹیشن. اب وہی کہتے ہیں میتھڈز اب ہم پہ پھر سے پاکستان یوز کر رہا ہے, یہ روڈ جو نیٹ ورکس بنایا جا رہا ہے, یہ باقی ڈیولپمنٹ یا گوادر بنایا جا رہا ہے, یہ تو بلوچوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, یہ لوگوں کا انفلکس ہوگا یہاں پہ, وہ غیر بلوچ ہوں گے, وہ لاکھوں میں نہیں ہوں گے, ملینز میں ہوں گے, تو وہ بلوچوں کو میجورٹی سے مائنورٹی میں چینج کرے گا, تو یہ ہمیں, یہ ہمارا جینوئن فیئر ہے, اور ہمیں پتہ ہے یہ جو چائنا نے کیا تبت کے ساتھ ایتھنک فلڈنگ, ایتھنک چائنیز کو وہاں لے جا کے آباد کروایا, अब वही बलूचिस्तान में हो रहा है, एथनिक फ्लडिंग हो रही है।
आप एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटेन की और वही रेल रोड उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किए, कुछ डेवलपमेंट जो हम अभी भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने विरसे में मिली बरतानिया के राज के बाद, और ऐसी चीजें जो हमने अपनाई और ऐसी चीजें जो हमने नहीं अपनाई। काला कानून जो था वो भी हमने देखा जो उन्होंने नाफिज किया, उसके अलावा उसको खत्म करने की तगोदो की गई, उसकी कोशिश की गई। तो बरतानिया से जब आप इक्वेट कर रहे हैं ऐसी चीजों को, ऐसी डेवलपमेंट और ऐसी प्रोस्पेरिटी के एफर्ट्स को, आप नहीं समझते इट कुड बी अ पिक एंड चूज। So what you want to apply and accept you could, and what you don't want to accept you don't have to.
लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के साथ जो बलूचिस्तान का जो जबरी इलाका है, तो जब अल्फाज जबरी आता है तो वहाँ तो जबर ही इस्तेमाल हुआ है। ये 60-62 साल पहले पाकिस्तान और बलूचिस्तान का ये जो इलाक हुआ है ये नाजायज इलाक है। यहाँ पे न काजी था और यहाँ पे ना कोई निकाह हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आप पे मुसल्लत होंगे हर हालत में। अब वो हालत में कुछ चल ही नहीं सकता है हमारा लेना देना, जो जहाँ पे हमारे लीडरशिप ने कभी ये नहीं कहा कि जी हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। और पाकिस्तान ने तब अपना नेवी भेजा था बलूचिस्तान के करीब और एक प्रेशर टैक्टिक था, तो उन्होंने आर्मी फिर भेजा, हमारे खानफ कलात को प्रेशराइज किया ये एक्सेशन ट्रीटी साइन करने के लिए। ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। पाकिस्तान को पहले ये मानना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा जी मैंने ये जुल्म किया था। ये पिछले 10-15 साल का वो अपना जुल्म मान रहा है, तो 60 साल पहले का जो उन्होंने जुल्म बलोचों पे किया उसको भी मानना।
नहीं मानते तो है ना, मतलब अगर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि जी हम हील करना चाहते हैं वो वूंड जो हमने बलोच अवाम को दिए, हम मतलब वी वांट टू मेंड द फेंसेस, वी वांट टू बिल्ड द ब्रिजेस, जब एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ये कह रहा है, तो आपको मतलब आपको नहीं लगता कि कहीं उसमें कहीं कोई जेन्युइन चीज होगी, या ये समझते हैं आप ये पॉलिटिकल गेम्स हैं?
उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। वो तो कहते हैं बलूचिस्तान एक सूबा है। बलूचिस्तान तो एक मुल्क था, एक स्टेट था, अपने फॉरन उसका पॉलिसी था, उनके अपने सारे हमारे निजाम थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, हाउस ऑफ कॉमन्स थे, तो ये सब कुछ तो था। फिर उसके बाद पाकिस्तान का फौज एंटर किया उन्होंने और आके बजोर शमशेर हमें एक गुलाम कौम बनाया। ठीक है, पाकिस्तान आया बलूचिस्तान के अंदर, हमें एक महकूम कौम उन्होंने बनाया, लेकिन महकूम अपने को हाकिम ही रखा। ये नहीं कहा कि मुसलमानी बेसिस पे आए, ठीक है हमने जोरी से कब्जा किया, अब आपके साथ भाईचारा करते हैं। ये 60 साल उन्होंने भाईचारा नहीं किया, अपना हाकिमियत दिखाते रहे कि हम हाकिम हैं आप गुलाम हैं।
अच्छा, कि 60 साल की जब हम बात करते हैं हिस्ट्री में वापस जाते हैं, आप समझते हैं कि जो 60 साल में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए, वो उन 8 साल या 9 साल से आप इक्वेट कर सकते हैं जो मुशर्रफ के दौर में आई? क्योंकि एकदम से हमें लगता है कि एग्जैसिबेट हुई प्रॉब्लम, और आज भी हम एक शख्स को मुर्दे इल्जाम ठहराता हुआ देखते हैं मीडिया में, देखते हैं मुफ्ती साहब के मर्डर के बाद। मतलब आप समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल है, या आप समझते हैं कि इट्स कपल्ड विद एवरीथिंग एल्स?
मैंने तो मुशर्रफ को कभी मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया, मैं तो पाकिस्तान की फौज को मुर्दे इल्जाम ठहराता हूँ। फौज ही था वो, तो कोई माजर था इंडिया से भाग गया है, तो वो फौज का कोर कौन है? वही तो पंजाब है, पंजाब से आए हैं, उनका इंटरेस्ट पंजाब के साथ है। हकीकत यही है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते हैं। तो अब यही है कि उन्होंने कभी आपके जुल्फिकार भुट्टो को आगे लाया और बलूचिस्तान पे फौज कशी किया, तब भी हजारों बलोच मारे गए, गायब हुए। अभी भी मेरे साथ लिस्ट है हजारों बलोचों का जो आज तक हमें मालूम नहीं है कहाँ पे है। ये हकीकत है। अब हम सिर्फ एक पीरियड लेते हैं कि पिछले 8-10 साल जो मुशर्रफ ने किया वो गलत होगा। मैं कहता हूँ जब स्टार्ट ही गलत हुआ यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल ठीक तरीके से वो बलूचिस्तान ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो फिर हम कैसे एक मुल्क का हिस्सा होंगे? जब हुए उन्होंने जोरी से करवाया, एक हिस्सा बनाया, फिर भी उन्होंने भाईचारा नहीं रखा बलोचों के साथ। क्या है? अब बराबरी पे बात करते हैं।
बलोचों ने रखा भाईचारा लोग बाकी लोगों के साथ। आपने पंजाब की सब बात की, तो पंजाब ने तो कितना सपोर्ट किया है बलोचिस्तान पैकेज को, एनएफसी अवार्ड को, देव रियली हेल्प्ड यू नो मूव इट अहेड एंड मूव इट फॉरवर्ड। तो आप नहीं समझते जितना पंजाबियों को मारा जा रहा है बलोचिस्तान में, और जितना से हम देख रहे हैं कि देयर इज बीन टारगेट किलिंग्स एंड पंजाबी टारगेट किलिंग्स, आप नहीं समझते दिस इज अनफेयर?
मैं ये कहूंगा कि पंजाब बलूचिस्तान ने पंजाब पे कब्जा नहीं किया है, ये बाकी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे कब्जा किया है। अगर हजारों बलोच मारे गए हैं उसके बदले में उन्हीं के फैमिलीज या जो जो उनके फैमिलीज होंगे करीब वाले होंगे उन्होंने अपना बदला लिया होगा उनका सोच के पंजाबी मुझ पे हमला कर रहा है तो मैं भी पंजाबी को नुकसान दूंगा। और यही हम सुनते हैं कि ये सारे जो मारे जा रहे हैं ये सारे मुखबिर हैं ये स्पाइज हैं एजेंसियों के जो हम सुनते हैं तो फिर स्पाई को तो रशिया और
तो क्या स्पाई करते होंगे क्या बताते होंगे मतलब अगर स्पाई क्यों भेजे जाते होंगे बलूचिस्तान में और क्या मतलब आपके ख्याल से क्या मुखबरी कर रहे होंगे
हजारों नौजवान बलोच जो गायब है कोई तो स्पाई होगा वहाँ पे इनके साथ तो कोई सैटेलाइट सिस्टम तो नहीं है ऐसे कि वो ये भी अपने लोकल ये इन्हों को ही भेज के स्पाइंग करके ये नौजवानों को गायब कर रहे हैं जो किसी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं है। हाँ ये है कि जल से जलूस में जाके नारे मारते हैं बलूचिस्तान के हकूक के लिए आजादी के लिए बलूचिस्तान के दिफा के लिए तो इस बात पे उनको गायब किया जाता है बहुतों के लाश मिल जाते हैं बहुत हाथ पैर टूटे मिल जाते हैं हमें कुछ तो नहीं मिले हजारों में
आते आ जाए एक शिकायत की लिस्ट है जो बलूचिस्तान ने बहुत अरसे में आवाज उठी है जिसमें आप भी आवाज पहुंचाते हैं उसमें एक लिस्ट में बहुत सारी चीजें आती है रिसोर्सेज की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात है अब तो आप तो कह रहे हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अलावा मतलब इट्स टोटली अलग एक स्टेट है मगर तो इस हवाले से तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स की गई हैं बहुत सारी अपनी चीजों को दोबारा से रीडू किया गया है आप समझते हैं दिस कुड आल्सो नॉट बी वेलकम
ओवरऑल सब पे काम करना है इनको इन एक स्पेसिफिक फील्ड पे काम नहीं करना है अब जो ये कह रहे हैं लोग गायब हुए हैं लोग हम वापस पहुंचाएंगे कोई भी वापस नहीं है वो 70 के दहाई के लोग गायब है आज तक नहीं आए ये रिसेंट वाले कहां आएंगे दो चार इन्होंने छोड़ दिया ये छोटे छोटे इनके स्टेप्स हैं इनको ये तो हमें यही बताना है कि पाकिस्तान ने बहुत गलत अमल किए हैं
मतलब बट ये छोटे छोटे स्टेप्स उठाए तो जा रहे हैं ना हरव्यास साहब मतलब आप क्या समझते हैं अगर ये छोटे छोटे स्टेप्स पाकिस्तान भी नहीं उठाएगा आप लोगों ने भी नहीं उठाए बुक्की साहब ने भी नहीं उठाए तो फिर कोई तो उठा रहा है ना मतलब उन लोगों के लिए उन मासूम लोगों के लिए उसी बलोच आवाम के लिए जिसकी बात आप कर रहे हैं जिसकी बात मैं कर रही हूँ आप नहीं समझते यही छोटे छोटे स्टेप्स एंड आई अंडरस्टैंड देयर माइट बी वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स बट अगेन एटलीस्ट कैन दे नॉट बी वेलकम
हम बिगर पिक्चर को भूल रहे हैं हम स्पेसिफिक एक दो चीज को देख रहे हैं हमें बिगर पिक्चर देखना है वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने काफी गलत इकदाम उठाए वही 40 से ऑक्यूपेशन किया फिर फौजकशी किया फिर उसके बाद ये उनके अमल है फौजकशी बहुत फौजकशी फिर हमारे नवाब नौरोज खान को शहीद किया नवाब बुगटी को शहीद किया हजारों बलोचों को ये उनके गलत अमल थे उनके फिर रद्द अमल में ये जो हो रहा है आज ये सारा बलोचों का रद्द अमल है जब उन्हें ऑक्यूपाई किया बलोचिस्तान रद्द अमल प्रिंस अब्दुल करीम का वो अफगानिस्तान तक गया वापस आया अपने आजादी के लिए लड़ा फिर उसके बाद उनका दूसरा अमल आर्मी ऑपरेशन था गलत अमल था फिर नवाब नौरोज खान उसका रद्द अमल बना फिर उनका मुशरफ एक अमल गलत अमल जिसने किया उसका रद्द अमल फिर से नवाब बुगटी बना अब हम जो कर रहे हैं ये रद्द अमल में कर रहे हैं बलोच कौम ये हमें समझना पड़ेगा कि अब हल तब हम ढूंढेंगे जब आपको पता चले कि पाकिस्तान ने क्या गलती
की एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर चीज रद्द अमल में है तो अब एक पॉजिटिव स्टेप अगर उठाया जा रहा है तो उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आ सकता ऑपोजिट ही आएगा
ये ऐसे कि आप कहेंगे मैं आपका सारे घर का मालिक बनूंगा आपको कमरा दूंगा आप उस पर खुश हो जाएं अब हमारा सारे घर का मालिक वो बना है अब घर जमाई भी वही बना है पाकिस्तान अब कहता है कि नहीं जी आपके कमरे में
वो तो आपके घर की मरम्मत कर रहा है ना वगैरह इस घर में आप रहें और आपके घर में अगर हमने कुछ गलत चीजें कर दी हैं तो आए उसको ठीक कर देते हैं मरम्मत भी कर देते हैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी कर देते हैं जहाँ जहाँ हमने कमियां की हैं तो वो आपके घर को तो टेक ओवर नहीं कर रहे
घर को टेक ओवर किया घर जवाई भी बनाया और अब ये है कि वो एक कमरा है जिसका नाम है ग्वादर उसको कह रहा है कि मैं उसमें फर्नीचर रखूंगा लेकिन ये भूल गया कि दूसरा कमरा जिसका नाम डेरा बुकटी है वहां से करोड़ों रुपए के जेवर उठा के बेच रहे वो भी देखना है हमें कि वो जेवर उठा के बेच के इसी घर का कुछ फर्नीचर बना रहा है।
अच्छा, तो आप समझते हैं बाहर वाला आकर अगर रिसोर्सेज पर कब्जा करता है, इसका मतलब है कहीं रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके यहाँ भी कमजोरी हो सकती है?
हमारे हाथ में तो बलोचों के हाथ में नहीं, हम ऑक्यूपाइड टेरिटरी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ऑक्यूपाइड,
सब चीज पे ऑक्यूपाई हो गया, सब चीज ऑक्यूपाई हो गई, कोई चीज तो आपके हाथ में होगी ना, कोई चीज तो बलोचों के पास होगी, सरदारों के पास होगी, वो कुछ अपने तरफ से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुफ्ती साहब कर सकते थे, हुई क्या?
मुफ्ती साहब को तो वो कहते थे कि ये मुफ्ती साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें, हमसे पैसे ले रहे हैं। मुफ्ती साहब का तो एक जायज हक था, वो एक बलोचों का नुमाइंदा था, वो ले भी सकते थे उनका अपने जिस सरजमीन पे हमारे आबाओ अजदा उन्होंने अपने खून दिए, और आके कोई बाहर से आके कह के नहीं हम मालिक बनेंगे, हम आपको जितना दें आप उसी से खुश रहें, तो ये बात हुआ। मुफ्ती साहब तो हमारे जेन्युइन एक लीडर थे, और हमारे सरदारों का कोई ऐसा पोजीशन नहीं है कि वो अपने कौम के लिए, हिस्टोरिक पोजीशन है लेकिन इकोनॉमिकली तो हम कुछ कर नहीं सकते उनके लिए।
तो बलोचिस्तान पैकेज तलखी, जिस तरह से मैं आपकी बातों से अगर असर करूं तो यही है कि तलखी नहीं कम होगी बलोचिस्तान पैकेज से?
नहीं जी, इकोनॉमिकली अभी हमें पाकिस्तान का एक नफसियत है, वो खुद मांगता रहता है जाके दुनिया वगैरह से, अमेरिका से, बाकी जो सुपर पावर्स है, वो अब वैसे ही सोचता है कि बलोच का भी वही सोच है कि उनको कुछ देंगे तो खुश हो जाएंगे। बलोच कहता है मेरा शनाख्त मुझे चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, और बाकी सारे वसाइल मेरे अपने सरजमीन में है। बलोच खुद देने के पोजीशन में, मांगने उसका कोई जरूरत ही नहीं मांगने का।
नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मांगने की जरूरत नहीं है बलोच को? मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी चाहिए, जिनको मतलब यू नो दे नीड सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइव्स, इन देयर लाइवलीहुड। और जिस तरह से जॉब्स की बात की गई, दिस एनएफसी अवार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट 5,000 जॉब्स जो कि लोगों को दी जाएंगी, और अब वो जॉब देने जाते हैं वहां जगहों पर तो अटैक्स किए जाते हैं। कौन कराता है ये अटैक्स, और ये रुकावटें क्यों आ रही?
ऑक्यूपाइड टेरिटरी में होता रहता है,
ऑक्यूपाइड टेरिटरी में वही जिनके ऊपर ऑक्यूपेशन हो रही है उन्हीं को टारगेट किया जाता है। ये बलोच लोगों को टारगेट करेंगे,
यहाँ पे ऑक्यूपाइंग फोर्स को टारगेट किया जा रहा है सेल्फ डिफेंस में, बलोच अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, ऑक्यूपाइंग फोर्स हमें पता है कौन है।
ये लोग जो नौकरी के लिए गए हैं तो बलोच है ना?
हमने नहीं सुना है कि किस बलोच को किसने टारगेट किया है। कुछ केसेस आगे आए तो फिर बता सकूंगा, लेकिन मैंने नहीं सुना क्या ऐसे। हाँ, दूसरे अल्फाज में अगर आप कहें कि बलोच लीडरशिप जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, उनका अपना एक एजेंडा है, वो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, अपने जो धन बनाने का एक सोच में है, जो पाकिस्तान का सिस्टम ये सिखाता है सिस्टमेटिकली कि आप धन बनाएं और अपने सरजमीन को भूलें। अब हमारा रहसानी साहब का जो एक मिसाल है, कुछ दिन पहले कहा उन्होंने कि जितने गायब लोग थे वो अंडरग्राउंड गए सिर्फ एजेंसियों को बदनाम करने के लिए। ये एक बलोच का तारीखी हवाले से सरदार है, बलोच सरदार कभी बलोच के बारे में ऐसे नहीं कहेगा और ऐसे मनगढ़ंत बात नहीं करेगा। पाकिस्तान के खुशनुदी के लिए, एजेंसियों के खुशनुदी के लिए उस जिस कौम का नुमाइंदगी कर रहा है उनके खिलाफ गलत बयानी कर रहा है, ये तो कोई असली हकीकी बलोच नुमाइंदा ऐसे बात नहीं करेगा। उसको पता है कि उसको पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पावर में लाया, फौज ने पावर में लाया, उन्होंने खुश।
आप अपने आप को एक हकीकी बलोच नुमाइंदा कहेंगे?
मैं बलोच गमख्वार कहूंगा अपने को, हकीकी नुमाइंदा नहीं कहूंगा, गमख्वार हूँ बलोचों के लिए।
आप समझते हैं कि आप ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं या आपकी जो आप चाहते हैं बलोच की आवाम को मिले, जितना आप कहते हैं कि आइडेंटिटी मिले, और आप समझते हैं कैन बी अचीव सिटिंग हियर इन लंडन इन एग्जाइल? मतलब पॉलिटिक्स फ्रॉम एग्जाइल नहीं हो जाएगी, आपको लगता है इसकी कोई इम्पैक्ट है?
मैं तो एक अपना एक जितना मुझसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कहूंगा कि मेरे करने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। बलोच अवाम वहीं पे असली जो करना है वो वहीं पे कर रहे हैं, उनका एक आवाज बन के मैं बाहर दुनिया को बता रहा हूँ कि ये जुल्म हम पे हो रहा है, बलोच कौम पे हो रहा है, उनका आवाज बन के मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे।
ये आवाज अब कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, क्या ये आवाज इंडिया तक जा रही है? क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट की जब बात की जाती है, बलोचिस्तान हैज बिकम सिनोनिमस नाउ विद रॉज इन्वॉल्वमेंट, और ये भी कि बहुत सारे लीडर्स जो हैं बलोच लीडर्स दे आर इन टच विद इंडिया और वो इंडिया से फंडिंग ले रहे हैं या इंडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको लगता है इंडिया को इन्वॉल्व करना ऐसे स्ट्रगल में सही होगा? और क्या ये मतलब आप पहले तो आप इसको बताएं कि आप ये कर रहे हैं क्या?
मैं बलोच की आवाज बन के दुनिया के हर कोने में ये आवाज पहुंचा रहा हूँ। अब इंडिया का आप जब स्पेसिफिक एक क्वेश्चन उठाते हैं वो ऐसे वो ट्रीजन की तरह आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ मैं बलोच नुमाइंदा हूँ, मैं बलोच सरजमीन का नुमाइंदगी कर रहा हूँ, बलोच कौम के लिए बात कर रहा हूँ। तो ये तो पाकिस्तान, फिर से ये मैं कहूँगा ये पंजाब को हमारे ये जहरीला बातें पंजाब को हमारे खिलाफ नफरत देने के लिए होता है जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन करते हैं। पाकिस्तान खुद उठ के अपने वजीरिस्तान में बाकी सारे जितने उनके इलाके हैं वहां पे जेट और कोबरा हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं अमेरिका के खुशनुदी के लिए, वो सबसे बड़ा ट्रीजन है। अपने कौम को मार रहे हैं और हमें कोई कह रहा है कि जो है हम बाहर मुल्क में जाके या इंडिया या किसी और के साथ बात कर रहे हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ बात कर रहे हैं एड, हम सिर्फ बलोच का आवाज पहुंचा रहे हैं।
आप समझते हैं कि जैसे वजीरिस्तान में हम ड्रोन या कोबरा या जो भी है आप समझते हैं हम सिर्फ अमेरिका के कहने पर करें, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है? जो हमारे यहाँ हो रहा है, जो हमारे यहाँ कराची में खुदकुश हमला हुआ जिसमें इतनी मासूम जाने गई, जिसकी जिम्मेदारी तरीके तालिबान ने कबूल की, आप अभी भी कहेंगे कि अमरीका की इन्वॉल्वमेंट?
मैंने अफगानिस्तान में बहुत साल गुजारे हैं और ये तहरीक तालिबान वालों को ISI ट्रेनिंग दे रहे थे, CIA ट्रेनिंग दे रहे थे। ये वही तहरीक तालिबान जिसको पहले मुजाहिदीन कहते थे। ये हर बलोच जिंदा या मुर्दा 5,000 रुपए इनको मिलता था ISI और MI से, उनका तस्वीर ले जाके 5,000 रुपए लेते थे। ये वही फ्रैंकनस्टाइन है जो पाकिस्तान ने बनाया, आज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं।
आप कितने साल से मुकीम है लंदन में?
मैं मुल्क से बाहर कोई 10 साल।
और लंदन में कब से?
आता जाता हूँ, इसी 10 साल से आना जाना हुआ। पिछले 4 साल से ये गवर्नमेंट जाने नहीं छोड़ रहे डॉक्यूमेंट।
यू आल्सो मूव योर फैमिली अराउंड विद यू?
माय फैमिली, उनको मूव करना था कराची से 2006 में, जब उनको हमें इन्फॉर्मेशन मिला पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वाले मेरे छोटे बच्चे हैं उनको किडनैप करने के चक्कर में थे, तो फिर वो खुद मूव हुआ यहाँ पे आ गए।
यू आर वेरी वेल रेड, आपने कहाँ से तालीम हासिल की?
जी मेरा हर जगह में, क्वेटे से यहाँ पे, अफगानिस्तान में, रूस में, हर जगह हम जैसे जाते गए।
एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव?
4 जी।
एंड वेयर डू यू स्टडी?
ओहेन
ये अगर हम यही बात करें कि देखिए ना आपके मतलब आपकी अपनी फैमिली है वो कितनी डिस्टर्ब होती होगी इस मूविंग अराउंड से, और इसकी रीजन हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड हैं या नहीं जस्टिफाइड हैं, बट यू हैव योर रीजन। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यही जो हम अपने बच्चों के लिए प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट, अगेन टू मेन थिंग्स, आप भी चाहते होंगे आपके बच्चे पढ़ें आगे जाएं, स्कूल्स नहीं बनने देते बलोचिस्तान में, देर आर नो स्कूल्स इन लॉट्स ऑफ एरियाज, आप क्या समझते हैं ये किसकी फॉल्ट?
मैंने नहीं सुना कि कोई स्कूल बनने नहीं दे रहे हैं। ये आप कह रहे हैं, आप स्टेटिस्टिक्स लाएं, आप प्रूफ लाएं, मैंने नहीं सुना कि कोई बलूचिस्तान में स्कूल नहीं छोड़ रहा है। क्वेटे में हमने कितना कोशिश की, एक नॉर्वेजियन NGO को वो भी चला गया अभी, तो वहाँ पे कुछ बच्चे, हमारे बच्चियां और बच्चे पढ़ रहे थे, उन्होंने आखिर में कहा कि नहीं, फंड्स नहीं है। हम खुद वहाँ पे सेल्फ हेल्प के साथ अभी 4-5 स्कूल चला रहे हैं क्वेटे में, बलूचिस्तान में। जी मेन चीज है कि बलूचिस्तान, फिर से पॉइंट वही आता है कि अपने हाथ में नहीं है, वो कहीं और से कंट्रोल होता है। वहां पे ये फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ देते हैं वो एक ब्राइबरी की तरह देते हैं, बार्गेनिंग चिप की तरह देते हैं। जो मेरे हिमायती है तो उनको हम देंगे, जो नहीं है तो उनको हम कुछ नहीं देंगे। ये तो आपको भी पता है वहां का सिस्टम। आपके पंजाब में हमने सुना गोस्ट स्कूल, ये तो सारे वहाँ एक सिस्टम इन्होंने रिवायत बनाया कि किसी को अगर फेवर करना है तो एक स्कूल दे दो, कुछ पोस्ट दे दो।
तो वेयर टू फ्रॉम हियर? मतलब बलोचिस्तान पैकेज आपके लिए तो तसल्लीबख्श नहीं है, NFC अवार्ड आप समझते हैं पाकिस्तान का फायदा करेगा, बलोचिस्तान का इसमें कोई फायदा नहीं है, सो वेयर टू फ्रॉम हियर, क्या करें हम?
जी मेरा तो वही बात है कि अगर पाकिस्तान को कुछ बलूचिस्तान के साथ लेना देना है तो फिर वो इंटरनेशनल गारंटीज चाहिए। अब उनको वो काजी लाने हैं, वो काजी सिर्फ इंटरनेशनल गारंटीज होंगे, वो आप यूनाइटेड नेशन कह सकते हैं, यूरोपियन यूनियन कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, ये वो काजी हैं कि जो कोई मीडिएटर हम कहेंगे तो कोई रास्ता निकालेगा। तो उसके लिए बातचीत होना चाहिए बलूचिस्तान के नुमाइंदों के साथ और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वो मैं सोचता हूँ फौज है।
अच्छा, इतनी हुकूमतें आई गई पाकिस्तान में, बहुत सारी दफा मतलब चेहरे बदले तब्दील हुए, हु डू यू थिंक हैज बीन क्लोजेस्ट टू योर थिंकिंग, या सबसे ज्यादा किसने बलोच के लिए दिल में जगह दिया, जिस तरह से आप सोचते हैं आपकी सोच के साथ उनकी सोच मिलती हो, ऐसा कोई था?
हाकिमों में से भी चूज करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा ख्याल है उनके दिल में यही है, माफी के साथ सब आते हैं फिर।
आपसे तो लोग इतना डरते हैं, आप कह रहे हैं हाकिम वो है, आपसे आपकी तो ज्यादा हाकमियत है।
हम यहाँ बैठे हैं, अगर इतना हमसे कोई डरते तो मैं खुद यहाँ भाग के नहीं आता।
मेरा ख्याल है ब्रिटिश तो आपसे डरते होंगे, आपको क्विट भी कर दिया केसेस में?
उन्होंने नहीं, उनकी पब्लिक ने क्विट किया, गवर्नमेंट ने काफी कोशिश किया हमें जेल में रखने का, जो हमें समझ आ रहा था कि कराची इस्लामाबाद में जाके इनके प्रोसिक्यूशन 6-8 महीने वहाँ आपके मैरियट होटल में बैठे थे सिर्फ मेरे खिलाफ एविडेंस जमा करने।
Because you've already lost Balaj, have you taken any measures to ensure your security?
नहीं जी, मैं अपने सिक्योरिटी के हवाले से परेशान नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि पाकिस्तान और ईरान काफी मेरे बातों से तंग आ गए हैं, जॉइंटली कुछ करना चाह रहे हैं, और वही सरकारी बलोचों के थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो होना होगा।
आपके भी बड़े मुखबिर हैं फिर?
हाँ, मुखबिर हैं बिल्कुल, ये तो है। आप कहेंगे मुखबिर, मैं कहूँगा दोस्त बलोच, खैर ख्वाह बलोच दोस्त जो हमारे साथ है।
आपके हो तो खैर ख्वाह, हमारे हो तो पाकिस्तान वहाँ पे भेज दे तो मुखबर, ये तो गलत बात होगी ना, मतलब आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, लोग अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, और कभी कभार जरूरी होती है। नहीं,
हम इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवाते, हमें इन्फॉर्मेशन हमारे दोस्त खुद बताते हैं कि ये आपके खिलाफ,
शायद वो भी दोस्त ही हूँ वाकई मुखबर ना।
हाँ, लेकिन उनके जो इन्फॉर्मेशन से बलोच मारे जा रहे हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है हमारे जात तक, अगर कोई बताएगा कि आपके खिलाफ कैबिनेट में ये बातचीत हुआ, जैसे आपके शेरपाओ आ रहे थे पहले से, उनके कैबिनेट मेंबर वाले ने मुझे फोन करके बताया कि जी आपके खिलाफ शेरपाओ एक्सटेडिशन ट्रीटी के लिए आ रहा है, तो वो आप मुखबिर कहेंगे, मैं कहूंगा कि दोस्त है, किसी को पता है हम जेन्युइन बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अपने जाती मुफाद से बढ़ के, हमने अगर जाती मुफाद या अपना सरदारी जमाना था तो फिर हम वहीं बैठे हो रहते हैं, और उससे कोई अच्छा तरीका नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाओ और वहाँ अपना सरदारी भी करो और अपने इलेक्शन भी जीतो, वो सबसे तो हम हट गए।
अच्छा, यही जो आवाज़ आप कह रहे थे कि आप पहुंचा रहे हैं दुनिया के हर कोने पर, जो स्पेसिफिकली मैंने इंडियन कनेक्शन में या इंडियन इन्वॉल्वमेंट का सवाल किया था, आप समझते हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया तो एक 100 पॉइंट है, ये एक डर और खौफ से नहीं निकलता कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंडियन रबते हैं, आप समझते हैं इसके बगैर, मतलब कोई और दुनिया का अगर कोई ममालिक से बात की जाए और मुल्कों से बात की जाए, बट स्पेसिफिकली इंडिया क्यों?
हम तो ये कहते हैं हमने तो इंडिया से भी बात नहीं की, हम तो इंडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सबको बता रहे हैं, हम तो यार ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने बात किया, यहीं पे 2-3 दफा ब्रिटिश पार्लियामेंट ही गया, इंडियन पार्लियामेंट में तो मैं नहीं गया हूँ। मैं कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से अगर ट्रेवलिंग का हो तो अमेरिका में भी लोगों से जाके मिले और बात करें, और बलूचिस्तान का जो फ्लाइट है उसको बताएं। इंडिया का ये जो सवाल तो पाकिस्तान ही उठा रहा है और कह रहा है कि हमारे से एविडेंस है, एविडेंस है, तो एविडेंस दिखाएं जी, हम भी खुश, अगर हम कसूरवार है तो दिखाएं कि भाई आपने इतना बड़ा हमारे दुश्मन के साथ गए मिले, तो फिर बताएं हमें, हम तो खुश हैं, कुछ बताएं। उनको कुछ है नहीं देने के लिए, वो सिर्फ इंडिया को डराने के लिए सब कुछ कर रहे हैं या पत्नी अमेरिका को, तो हम कहते हैं हम तो हमें जहाँ मौका मिले हम बलूच आवाज पहुंचाएंगे।
आपको आपको ये आपको मालूम है, मतलब मैं आपसे आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर थिंकिंग, तो आपको ये मालूम है कि अगर इंडियन हेल्प हो किसी भी आपका वो जो भी कॉज हो, चाहे वो फ्रीडम स्ट्रगल आप कहें, चाहे उसका जो कहें, तो मतलब उसमें अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट होगी तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, क्या आप समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड दैट, मतलब कि इट कुड बी अ बिग प्रॉब्लम?
काउंटर प्रोडक्टिव से वो पंजाबी नाराज होता है,
आई एम टॉकिंग अबाउट द होल, आई मीन आप तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, मगर मेरे लिए तो अभी तक है, सो तो आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ पाकिस्तान.
ये देखना है, आप तो अभी तक तो ऑक्यूपेशन को देखे सपोर्ट कर रहे हैं कि बलोच ऑक्यूपेशन को, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आप
माने बलोच ऑक्यूपेशन नहीं कह सकते, मैं बलोच ऑक्यूपेशन नहीं कहती. आप आपका नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है, आपको बिल्कुल आपकी बात आपकी आपकी है, मगर मैं जो कह रही हूँ कि मेरे लिए तो एक मैप पे इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इट्स विद पाकिस्तान. बट इफ यू डू नॉट अग्री विद इट, दैट्स टोटली योर पॉइंट. बट मैं जो कह रही हूँ कि आप ये समझते हैं कि इंडिया, अगर हम वैसे भी देखें, एक हमारी हिस्ट्री रही है, तो इंडिया इज अ सॉर पॉइंट. सो ऑल आई एम सेइंग इज आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू मेक एन एनिमी आउट ऑफ देम, बट यू हैव टू मेक देम योर फ्रेंड इन अचीविंग योर गोल.
मैं कहता हूँ कि जी जितने 190 जितने स्टेट्स हैं, मैं सबके साथ अपना रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ, और ये कोशिश है कि हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन हो. एम्बेसीज खुले जैसे 60s में हुए कुछ अरब मुल्कों में, बलोचों का एम्बेसीज खुला, तो फिर से हम कोशिश यही करेंगे कि एम्बेसीज खुले और बलोच को रिकग्निशन मिले कि एज अ स्टेट. जी एफ सी का एक अपना रोल है, जैसे लोगों को डरा धमका के वहाँ से, हमारा बलोच कौम का एक तजलील कर रहा है वहाँ पे, जो मैंने सुना है कि रोडों पे लोगों को जामा तलाशी के अलावा मुर्गे बना रहे हैं, अपने क्या कर रहे हैं, ये तो एक कौम का तजलील हो रहा है. IGFC का अपना एक किरदार है, वो एक मिनी मुशरफ है, उसका बात वही मुशरफ की तरीके से बोलता है, वैसे बड़े बड़े बड़की मारते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो बलोच का तो बड़ा गुस्सा दिखाता है, और कभी आप सवाल करें तो प्रेडेटर या ये जो ड्रोन हमलों का पूछे तो उसमें तो बड़े मीठे मीठे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. मैं सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान के फौज को कुछ बलूचिस्तान में कुछ करना है, तो ऐसे लोग जो IGFC जैसे लोग आते हैं, तो ये टोटली हालात को और भी बिगाड़ रहे हैं. हमारा यही कोशिश है कि एक निगोशिएटेड सेटलमेंट होना चाहिए, उसको उसमें इंडिपेंडेंस पैरामाउंट है, लेकिन फिर भी एक निगोशिएटेड होना चाहिए विद इंटरनेशनल गारंटीज. लेकिन ये मिनी मुशर्रफ जो बैठे होते हैं वहाँ पे, आज जो सलीम नवाज की तरह, ये हालात को और खराब करेंगे.